रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुवे तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे कहने में चार चीज है, वास्तव में एक ही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। एक भगवान की भक्ति हो जाए तो उस भक्ति में भगवान निवास करते हैं, भक्ति में संत लोग निवास करते हैं, भक्ति में गुरुजन निवास करते हैं, भक्ति में भक्ति निवास करती है, सब उसमें आ जाता है। भागवत में पूछा है देवहूति ने भगवान कपिल से कि भक्ति कहते किसको है, तो बड़ी सुंदर बात बताई। कपिल भगवान ने कहा कि जो हमको सबसे पहले दुख में याद आता है वो उसमें हमारी भक्ति समझनी चाहिए। किसी को हम अपना मान के याद करें तो पहले ही पहले किसको याद करते हैं, इतना स्पष्ट वहां नहीं आया है, पर ये अपने लोगों की समझने की बात है। सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, यदि परिवार में किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो वो उसमें हमारी भक्ति है, धन को याद करते हैं तो धन में हमारी भक्ति है, संत को याद करते हैं तो उसमें भक्ति है, भगवान को याद करते हैं तो भगवान में भक्ति है, स्वाभाविक। उठते ही सबसे पहले क्या याद आता है, हमारे चित्त में हरदम क्या ही क्या बातें रहती हैं, जिधर हमारा प्रेम होगा, लगाव होगा, खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उसी का ही मनन होता है, कायदा है, या जिसके साथ द्वेष होता है उसमें मन जाता है। मन रूपी रेलगाड़ी के लिए दो चैले हैं, एक राग और एक द्वेष। जहां तक राग और द्वेष है वहां पर मन की गाड़ी चलती है, जहां राग नहीं द्वेष नहीं वहां मन नहीं जाता। बड़ा अच्छा भवन है, खूब साफ सफाई अच्छा है, आप हम सभी काम में लेते हैं, पर यूं ही सत्संग से निकले याद ही नहीं आता, और अपना घर इतनी सुविधा देने वाला नहीं, इतना महंगा भी नहीं, इतना आरामदायक नहीं, वो यहां बैठे याद आता है, कारण कि उसमें राग है। ऐसे संत महापुरुष अपने अंदर हरदम भगवान की ही स्मृति रखते क्या स्वतः ही होती है, क्योंकि वे भगवान को याद करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं कि मेरा खास कौन है, भगवान, बस वह भक्ति होगी, और प्रतिफल में भगवान उस भक्त को भक्ति देते ही रहते हैं। उन भक्तों की महिमा में आज सुदामा जी का प्रसंग बताया जाएगा। सुदामा जी थे पिछले जन्म में शतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, रामायण में शतानंद जी आता है वो नहीं, दूसरे ही, नाम तो एक कहीं के हो सकते हैं। सतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, और उन्होंने धन के लिए भगवान का पूजन किया, व्रत किया, सत्यनारायण भगवान का खूब अनुष्ठान किया। अब सत्यनारायण हो, लक्ष्मी नारायण हो, राधे श्याम हो, सीताराम हो, गौरी शंकर हो, मिला के तो एक ही है। हम लोगों की बुद्धियां अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग नाम है। वास्तव में तो हम लोगों की भाषा से भी अलग लिखते हैं, एक ही। जल लाओ, पानी लाओ, वाटर लाओ, आप लाओ, एक ही चीज आएगी। सत्यनारायण भगवान की खूब पूजा करते थे, पैसा मिल जाए। भगवान ने देखा कि बेचारा भगत है, ये भक्ति तो बहुत करता है पैसे को लेने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, पर जब तक मन में कामना रहती है और लोभ रहता है तब तक इसको धन का सुख नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही सुख, कितना ही धन मिल जाए। धन की अंदर से कामना निकले और धन का लोभ निकले तब देखो धन का कितना सुख मिलता है। धन का सुख लोभ है वो ढक देता है, कामना है वो ढक देती है। ऐसे ही परिवार के लोगों का भी सुख बड़ा विचित्र मिलता है। पिता का सुख है, माँ का सुख है, भाई का सुख है, प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य का बड़ा सुख होता है, परंतु स्वार्थ के कारण से वो सुख दब जाता है। स्वार्थ होने से पिता का सुख क्या है जान नहीं पाते, माता का सुख क्या है जान नहीं पाते, पिता का सुख क्या है पहचान नहीं पाते, भाई का सुख नहीं पहचान पाते, बहन का सुख क्या है नहीं पहचान पाते, पुत्र का सुख क्या है नहीं पहचान पाते। स्वार्थ हर एक चीज के अंदर कुछ न कुछ हमारी विकृतियां हैं जिनसे उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता। भगवान ने देखा बेचारा सतानंद पूजन तो हमारी करता है खूब, लेकिन अंदर से लोभ वृत्ति नहीं गई, क्या क्या अब इसको धन दे देंगे तो और दुख पाएगा, भगवान ने धन दिया नहीं, वही अगले जन्म में सुदामा बना। सुदामा जी थे, इसलिए भागवत में लिखा है कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, कोई एक कृष्ण का मित्र था, कोई एक से उसका थोड़ा पिछले जन्म का संकेत का आभास मिलता है। तो सुदामा जी बेचारे अपने घर में रहते थे और उनके पास आटा एक शेर का भी नहीं। ब्राह्मण होता है उसको एक साल की खाद्य सामग्री यदि हो तो अपरिग्रह नहीं माना जाता, एक साल की खाद्य सामग्री घर में रखे ब्राह्मण तो वो परिग्रह नहीं माना जाएगा, अपरिग्रह ही माना जाएगा। परंतु सुदामा के यहां एक साल का क्या, एक शेर आटा नहीं उनके पास, और मन में बड़ी निष्कामता, किसी से कोई याचना नहीं करना। चार वृत्ति होती है ब्राह्मण की, याचना वृत्ति से निर्वाह करता हो ब्राह्मण दोष नहीं है। यायावर वृत्ति बोलते हैं, घरों में घूम घूम करके वृत्ति अपना निर्वाह करे, दोष नहीं, शास्त्र की आज्ञा है। यायावर वृत्ति है, शिलोंचन वृत्ति है, वार्ता वृत्ति है, शालीन वृत्ति है। शालीन वृत्ति वो होती है घर में बैठे अपने आप को दे गया उससे काम करे, शालीन वृत्ति। शालीन वृत्ति को बहुत ऊंचा मानते थे सुदामा जी, दे दिया नहीं है तो नहीं सी। कई दिन से कोई भगत आया नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं, तो पत्नी ने कहा कि आप कृष्ण के पास जाओ, मना कर दिया नहीं रहे। क्यों? क्योंकि देखो तुमको पता नहीं है, कृष्ण के पास अब जाऊंगा मैं, अब मेरे पास कुछ आटा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा, इसका अर्थ यही है कि मुझे कुछ दो। ये कायदा नहीं है कृष्ण के पास जाने का। तो अच्छा बाबा, मांगना नहीं, कहना नहीं। अरे कहना नहीं तो क्या हुआ, वो तो दुर्दशा देख करके अपना आप ही मुझे दे देंगे तब। अच्छा देवे तो लेना नहीं, यदि तुमको कुछ दे देवे तो लेना नहीं और मांगना नहीं। अब क्या, अब फिर क्यों जाऊं? दर्शन कर आओ, आपके पुराने मित्र हैं, दर्शन कर आओ, क्या अच्छी बात है, चले जाएंगे दर्शन करने के लिए, चले जाएंगे। प्रश्न होता है कि ब्राह्मणों के पास में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो एक दिन विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आप सब जगह जाती हो, ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ किया, ब्राह्मणों से आप क्यों नाराज? लक्ष्मी जी ने कहा कि वो हम जाने और ब्राह्मण जाने, आप इसमें मत बोलो कि नहीं, कुछ तो हमको भी तो दया आती है ब्राह्मणों पर, हम भी पूछे तुमसे कारण क्या है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मणों ने मेरे बाप को दुख दिया। तुम्हारे बाप को क्या? कौन? ये सागर है, ये मेरा बाप है। सागर बाप, अगस्त ऋषि ने सागर को पी लिया, तो अगस्त ऋषि ब्राह्मण था कि नहीं? पीत क्रुद्धे न तात। और स्त्री के लिए सबसे बड़ा यदि संसार में है तो पति होता है, स्त्री के लिए पति से ऊंचा कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं। तो चरण कल हथो बल्लभ हो ये नरो साथ। और ब्राह्मण ने आकर के आपके छाती में लात मारी कि नहीं? वो भृगुजी ब्राह्मण ही तो थे, भगवान ने कहा मारी तो चिन्ह है। और क्या बात हुई? और देखो, हमारी सरस्वती के साथ में थोड़ी अनबन रहती है, होता है स्त्रियों स्त्रियों में ईर्ष्या रहती है। तो द्वारवत्याम विप्रवर्ग ही शुभ मुख विवरे धारिता वैरिणी में। और ब्राह्मणों ने क्या किया? मुझे तो स्वीकार किया नहीं, सरस्वती को स्वीकार किया, और उस सरस्वती को उन्होंने मुख में धारण किया, इतना सरस्वती का आदर किया। तो मैंने कहा मेरा आदर तो है नहीं, मैंने मुंह मोड़ लिया। और क्या नुकसान किया? और नुकसान मेरा ये क्या, गेहम में छेद अंत है, मैं बिल्व पत्र में रहती हूं। और ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि बिल्व पत्र के अंदर छेद करते हैं, उसका छेदन करते हैं, बिल्व पत्र में छेदन करते हैं। और कहते क्या है? उमाकांत पूजा निमित्तम, हम शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। तो बिल्व पत्र का छेदन करके और शंकर जी की पूजा करते, मेरा तो निवास स्थान बिगाड़ दिया ना। तस्मात् छिन्ना सदा हम द्विज प्रति निलयम नाथ नित्यम तजामी। इसलिए हे नाथ, मैंने ब्राह्मणों को हाथ जोड़ दिया, ब्राह्मणों के पास में रहना पसंद नहीं करता। तो इस कारण से तो दरिद्र रहते थे। अब प्रश्न होता है कि सुदामा जी को ये कैसे, सुदामा की पत्नी को कैसे पता चला कि सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र हैं। मित्रता की क्या बात, कि मित्रता की बात तो यह है कि पति और पत्नी में बातें तो होती रहती है, मैं ऐसा था और मैं ऐसा था और मैं ऐसा था, तो सुदामा जी के मुंह पे तो हरदम कृष्ण की कथा रहती थी। वो कहते देखो कृष्ण मेरे मित्र हैं, हम साथ में रहते थे करते थे। तो ये बात ठीक है, लेकिन जाने की प्रेरणा कैसे थी? सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, सुशीला ही थी और सुशीला नाम भी था, दोनों ही बात बहुत शीलवती थी और वैसे भी वो सुशीला और नाम भी सुशीला। तो जाने के लिए कैसे कह दिया? क्योंकि कृष्ण के पास जाने की भावना तो सुदामा के अंदर आनी चाहिए, उसने कैसे कह दिया कि आप जाओ? तो ये भगवान ने प्रेरणा दी। ये भगवान ने प्रेरणा कैसे दी, सुनना हो ध्यान से, नहीं इसलिए भी बातें आती हैं इसमें। भक्तमाल की कथाओं में ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि अपन लोगों ने सुनी नहीं वो कथा, भगवान ने याद किया, अरे सुदामा नहीं आया। सुदामा इतना निष्काम है, इतना गरीब है, वो मेरे पास आने में संकोच करता है कि ठाकुर जी दे देंगे, वो तो इसलिए नहीं आता है, मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं जाऊं और संकोच में पड़ जाएगा, और क्या करूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बड़ी याद आई ठाकुर जी, बहुत याद आई, बेचैन रहने लगे, महल में यूं घूमे करे। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ, कोई भगत याद आ रहा है क्या, बेचैन क्यों हो, जाया हो, किसी से मिलना है तो जाया हो। कहा कि जा भी नहीं सकता तो बुला लो, बुला भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते, ऐसा कोई भगत है क्या आपका? ऐसा भगत है? कहते कहते भगवान के आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी जी ने कहा कि आपके आंखों में आंसू आ गए तो हिम्मत करके आप जाइए, जा नहीं सकते। क्यों? जाने से उस भगत को दुख हो जाएगा, भगत को दुख हो जाएगा तो मेरे को ज्यादा दुख होगा, फिर आपकी जलन कैसे मिटे, वही सोच रहा हूं। मुझे बताओ ना वो कौन भगत है, कि बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताता? हर बात बताने के लिए भगवान ने एक उपाय सोचा। भगवान ने देखा कि मेरा भगत सुदामा अपने स्त्री के बार बार आग्रह करने से मेरे पास आ सकता है, और तो कोई कारण है नहीं। अब स्त्री को कैसे कहा जाए? तो भगवान एक ब्राह्मण बनकर के गए, सुदामा जी की कुटिया पर गए, ब्राह्मण बने हुए बोले भवते भिक्षाम देही। देखो तीन बातें हैं, भवते भिक्षाम देही, ब्राह्मण के परिवार में जाए तो भिक्षुक को यही बात बोलनी चाहिए। तीन शब्द हैं, भवते भिक्षाम देही, वैश्य के घर में जाए तो भिक्षाम भवति देही, क्षत्रिय के घर में जाए देही भिक्षाम भवति, तो आदमी समझ लेता है कि भाई ठीक है ये इनका घर है, तो भवती भिक्षाम दे, ब्राह्मण के घर में ये शब्द का संबोधन पहले, भवती शब्द का संबोधन पहले दिया, ये भवती भिक्षा दे। तो सुदामा जी की पत्नी दरवाजे पर, दरवाजा काहे का है, झोपड़ी के बाहर आएगी, फलसा तक आएगी, भिक्षा दे। तो सुशीला जी ने कहा कि मेरे तो यहां सूतक हो गया, इसलिए दीक्षा दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। सुवा और सूतक में भिक्षा नहीं होती। सुवा कोई घर में पैदा हो जाए, सूतक कोई मर जाए। तो उन्होंने कहा कि सूतक मेरे सुवा हो गया है, सुवा। किसके हुआ? हमारे घर में हुआ, सुवा हो गया। कितने दिन से हुआ? जन्मी तब से हुआ, मैं जन्मी तब से सुवा हुआ है। और कब तक समाप्त हो जाएगा ये पता नहीं, कब तक समाप्त होगा। सुवा तो हो गया मेरे, इसलिए भिक्षा कैसे देऊं? तो कहा कि देखो, सुवा तो 10 दिन में जब नाम लिख दिया जाता है तो मिट जाता है। कैसा मेरा सुवा तो ऐसा है, वो तो जीवन भर का ही लग गया। तो कहा कि भाई, आपका शरीर डील डोल ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई प्रसूति में से आए हो, जिसका शरीर कृश होता है, दुर्बल होता है, और बच्चा अपने हाथ में होता है, तो वो अभी सत्य प्रसूति में से उठी हुई है। लेकिन आपका बच्चा कहाँ है? कि मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहता है, तो दिखता तो नहीं है। अच्छा, जो कोई बात नहीं, दिखता तो नहीं सही। तो आपके पुत्र का नाम तो रखा होगा ना, क्या नाम रखा है? तो चलो हम नाम के द्वारा बता देंगे कि आपकी कैसी शुद्धि हुई नहीं हुई। तो मेरे पुत्र का नाम है दारिद्र्य, दारिद्र्य मेरे पुत्र का नाम है। अच्छा, तो दारिद्र्य है तो इसको दूर करना चाहिए, इस सूतक इस सुवा को दूर करना चाहिए। कैसे करें? कि मित्रों की सहायता लो। तो हमारा तो कोई मित्र है ही नहीं, तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारे पति है उनका मित्र है। कौन? द्वारिकानाथ कृष्ण, उसके पास पति को भेजो। क्या पति जाना ही नहीं चाहते? पति जाना नहीं चाहते, बैठ जाओ चौधरी जी, बैठ जाओ। बैठ जाओ। वो तो आना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते। क्या नहीं, उनको कहो कि तुम्हारे मित्र से मिलो। हम बोलते हैं ना, जाओ कह दे। तो अच्छी बात, तुमको पता है कि नहीं, तुम्हारे पति और कृष्ण द्वारिकानाथ दोनों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे। तो उनके पास जाओगे तो ऐसी दरिद्रता दूर, वो दारिद्र्य को दूर करेंगे, ऐसा दारिद्र्य दूर करेंगे कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर में कभी आगे दरिद्रता आएगी नहीं। तो ठीक है। सुशीला ने कहा कि आप मांगना नहीं जाओ। सुदामा जी ने कहा कि इतने दिन तक तुमने नहीं कहा जाने के लिए, आज कैसे कहा? कृष्ण के पास जाने के लिए आज तुम्हारे मन में क्यों आई? बार बार तुम मुझे क्यों कहती हो कि कृष्ण के पास जाओ? बिना मांगे 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 आप मांगना नहीं और वो देवे तो लेना नहीं, और फिर भी कृष्ण के पास जाओ, ये भाव तेरे अंदर कैसे पैदा हो गया कि आपकी कृपा से? बताए नहीं कि एक ब्राह्मण ने कहा कि अच्छी बात। तो रवाना हो गए। इधर कवि लिखते हैं, हे करता रोतास कहो कबहू जनि दीदी एकाहू को टोटो। एक कवि ने कहा है भगवान से कि महाराज, कृष्ण का और सुदामा का मिलन कब कैसे क्या हुआ? लोग कहते हैं कृष्ण और सुदामा स्कूल में मिले थे, ऐसी बात नहीं है। उस स्कूल में पाठशाला में उज्जैनी में सुदामा जी पहले दाखिल हो गए थे, पहले प्रवेश ले लिया था। तब तक भगवान कृष्ण उस स्कूल में गए ही नहीं। तो सुदामा जी थे वो स्कूल में पहले से ही पढ़ते थे और गुरुजी ने भेजा कि बेटा संविधा लेकर आओ, लकड़ी लेकर के आओ जंगल से हवन की सामग्री। छोटे ही थे सुदामा जी, गए लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी बटोरते बटोरते एक बड़ा कांटा उनके पैरों में घुस गया। अब कांटा घुस गया उनके तो इतनी पीड़ा के जोर जोर से रोने लगे। अब वो जंगल में कौन सुने कि देखो मेरा कोई मित्र होता तो आज मेरी सहायता करता। अब कांटे में क्या है, बच्चे के तो उस कांटे को पकड़े तो ज्यादा तकलीफ हो और निकाले तो और तकलीफ। तो बच्चा क्यों निकाले, वो तो रोता रहा कि कोई मेरा होता तो आज मेरे साथ होता तो वो मेरा कांटा निकाल देता, कोई मेरा होता। ऐसी सुदामा के अंदर पुकार हुई। इतने में ही एक रथ आ रहा था, उस रथ में भगवान कृष्ण बैठे हुए उसी पाठशाला में आज दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, प्रवेश करने के लिए। भैया आज कृष्ण का वहां नाम लिखेंगे और उनको वहां पर प्रवेश में दे जाएंगे। तो वो रथ पर बैठे आ रहे थे, उन्होंने एक अपने ही हम उम्र के ब्राह्मण को रोते बिलखते कांटे से पीड़ित होते हुए देखा तो रथ को रुकवाया, सारथी से कहा रथ रखो और उसके पास में गए। बहुत प्रेम से भगवान ने उसके कंधे पर, क्या हुआ आपके, वो देख छवि देखे भगवान की, मनु और छोटी उम्र भगवान की देखे भगवान, आपके क्या हुआ। वो रोवे भी आनंद भी आए, रोवे भी आनंद भी आए, कहा कि मेरे पैर में कांटा चढ़ गया, मैं निकाल देता, चिंता मत करो। ऐसा करके भगवान ने उसके चरण पर हाथ रखा, हाथ रखा पुलकित हो गया। भगवान को निहारता रहा। भगवान ने कहा देखो तुम मुझे देखते रहो और मैं तुम्हारा एक कांटा निकाल देता हूं। तो कांटा निकाला, तो निकाला तो सुदामा जी के खून ज्यादा आने लगा। तो भगवान का वो पीताम्बर था ही, पीताम्बर फाड़ करके और उसके लपेट दिया, खून आना बंद कर दिया और कहा चलो मेरे साथ रथ में चलो। तुम कौन हो, कहां जाओगे, मुझे कहां ले जाओगे। यहाँ एक संदीपनी की पाठशाला है, उस पाठशाला में मैं भर्ती होने के लिए जा रहा हूँ, तो उसमें तो मैं पढ़ता ही हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात, आओ बैठो मेरे रथ में बैठो। भगवान ने उसको सहारा दिया, वो लंगड़ाते फिर भगवान ने उसको उठा करके रथ में बैठाया। वो भगवान को देखता रहे कौन है, कैसा विद्यार्थी है, कैसा मनोहर आकृति वाला है, वाणी में कितनी मिठास है, सेवा का कितना इसका भाव है, कितने कितने गुण देखने लगा। वहां ले जाकर के गुरु जी के पास में सुदामा पहुंच गए। गुरु जी ने कहा क्या हुआ बेटा तेरे, कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया और ये एक मित्र आया, ये भी यही आ रहा था, इसने मेरे सब मरम पट्टी करके ठीक कर दिया। अब वो देखे गुरु जी कृष्ण सुन, गुरु जी को तो पता था कि मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे यहां त्रिलोकीनाथ भगवान चेला बनेंगे। सांदीपनी को अपने गुरु जी की वो सारी बातें याद आई। ये सांदीपनी ऋषि थे, ये काश्य गोत्र में पैदा हुए थे। तो इनके गुरुजी इनके भोलेपन से मन में राजी थे और ऊपर से इनकी परीक्षा लेते थे। सब लड़के इधर उधर काम में लग जाते तब कहते ए सांदीपनी इधर आ, ये तेरा गुरु भाई है, इसको कुएं में डाल दो। तो उठा के कुएं में डाल देते, गुरु जी चिल्लाते, अरे अरे इस मूर्ख सुदामा जी, इस मूर्ख सांदीपनी ने मेरे पुत्र को कुएं में डाल दिया, निकालो निकालो निकालो। लड़के आते बच्चे को निकालते और सुदामा पर टूट गए, सांदीपनी पर टूट पाए, मारो मारो मारो, बोला बोला। आप हम होते तो क्या कहते कि गुरुजी आप हमको इनसे पिटवाओगे क्या? आदेश तो आप देते हो और उपालम हमको मिलता है, हम तो आपके आदेश का पालन किए थे। लेकिन सांदीपनी ने अपने गुरु भाइयों को ये नहीं कहा कि मैं जो कुछ करता हूं गुरु की आज्ञा से करता हूं। यही बात गुरुजी चाहते थे कि देखें जरा सी भी गुरु में एक कमी देखता है क्या। एक दिन बच्चे इधर उधर थे, अरे सांदीपनी इधर आ, अपने आश्रम के चारों तरफ बाड़ है, जाकर के आग लगा दो। वो जाकर आग लगा ली, वो बाढ़ जलो, अरे विद्यार्थियों जल्दी आओ, अपने आश्रम की बाढ़ में आग लग गई, ये सांदीपनी ने आग लगा दी। तो लड़कों ने मिट्टी से पानी से आग को बुझाया और सांदीपनी को कहा, सांदीपनी अब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, या तो तुम स्कूल छोड़ दो नहीं तो हम तुमको पीटेंगे, तुम बहुत पागलपन करते हो। सांदीपनी चुप रहे, गुरु जी ने कहा भोला है, भोले आदमी ऐसा छोड़ छोड़ छोड़। एक नहीं कई बार ऐसी परीक्षाएं हुई, फिर विद्यार्थी सब पढ़ पढ़ करके निकल गए। अब गुरुजी का अंतिम समय आया है, जितने अपने शिष्य थे सबको बुलाया है, बुला के कहा देखो भैया हमारा शरीर जाने वाला है, हमारे पास ये बहुत सी पुस्तकें हैं, हमारे पास संध्या वगैरह की सामग्री है, ब्राह्मणों के पास तो यही धन होगा, पुस्तक होगा, यज्ञ की सामग्रियां होंगी, ये पुस्तक तुम ले लो, ये पुस्तक तुम ले लो, ये तुम्हारे विषय की है, ये तुम्हारे विषय की, सबको पुस्तकें दे दी, किसी को यज्ञ की सामग्रियां दे दी, सब दे करके किसी को आसन दे दिया, किसी को क्या दे दिया, सब दे दिया। अब सांदीपनी रहे, सांदीपनी ने आके हाथ जोड़ा, गुरुजी के चरणों में शीश नवाया, गुरुजी रोने लगे कि बेटा मैं तेरे को कुछ दे नहीं सकता हूं, जो भी कोई वस्तु दूंगा वो स्थूल वस्तु होगी, तेरे को मैं एक आशीर्वाद देता हूं, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि त्रिलोकी नाथ भगवान तेरा शिष्य होगा और उसके द्वारा तेरा खूब नाम हो जाएगा। सांदीपनी ने मन में विचार किया कि मेरे पास तो कोई इतनी पढ़ाई भी नहीं, विद्या भी नहीं, इसलिए सांदीपनी की पाठशाला चलाते थे उज्जैनी में, सबसे कमजोर पाठशाला थी उनकी, क्योंकि सांदीपनी बहुत कमजोर विद्यार्थी थे। अब कमजोर विद्यार्थी यदि पढ़ाएगा तो कमजोरी की विद्या ही पढ़ाएगा, पर गुरु का आशीर्वाद देते, गुरु का आशीर्वाद तो भगवान भी उसी में गए, वो आशीर्वाद याद आ गया, भगवान की केवल मुख छवि देख करके त्रिलोकीनाथ भगवान यही हो सकते हैं। दाखिला कर दिया, प्रवेश हो गया। वहां पर एक नियम था, नियम यह था कि जो कोई विद्यार्थी पाठ को याद नहीं करेगा उसको जंगल में जाकर समिधा लाना पड़ेगा, लकड़ियां लानी पड़ेगी। तो एक दिन सुदामा जी पाठ याद नहीं किए तो वो जंगल में उनको समिधा लाने भेज दिया, पीछे से भगवान रोने लगे, आज मेरा प्रिय मित्र यहां नहीं है, मेरा प्रिय मित्र यहां नहीं है, जंगल में गया है, कितना समय लगेगा, बहुत रोए। बाद में विचार किया कि जिस दिन सुदामा पाठ याद नहीं करे उस दिन को पाठ को मैं भी कह दूंगा मुझे भी याद नहीं, ताकि मुझे भी साथ में भेज देंगे भगवान। भगवान ने विचार किया, तो पहले बार तो भगवान ने जैसे रो दो करके अपना समय निकाल लिया, दूसरी बार में जब बारी आई तो सुदामा जी ने को पाठ याद नहीं था, तो जाओ फिर कृष्ण से पूछा कि तुमको पाठ याद है? भगवान को तो क्या याद क्या नहीं याद, सब कुछ याद ही था कि मेरे को भी याद नहीं, तो तुम भी जाओ समझा ले। अब भगवान खुश हो गए, बड़ा अच्छा हुआ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। खूब उछलते कूदते गए, लेकिन भगवान को बहुत आनंद आया। जब जब सुदामा बोले कि हमको याद नहीं, तब तब ऐसा ही करेंगे। एक दिन गुरु माता ने देखा, सांदीपनी की पत्नी ने देखा कि दोनों बच्चे समिधा खूब लाते हैं, अरे अच्छे हैं, खूब अच्छा सेवा भाव रहता है, मित्र भाव रहता है, जंगल में जाते हैं बेचारे, इनको भूख लगती होगी। माताओं बहनों का तो ध्यान ज्यादा भोजन पर रहता है, तो उन्होंने चने दे दिए कि देखो सूर्य चढ़ जाए, भूख लग गया है, ये चने हैं, तुम चने खा ले। तो सुदामा जी ने अपने कपड़े में दोनों का हिस्सा चढ़ा था, वो बांध लिया, चलने लगे, सूर्य चढ़ गए, खूब गर्मी पड़ने लगी। अब सुदामा जी गट 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 एक 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 चना खाते लगे, भूख लगी तब। अब दोनों का हिस्सा था, आधा चना खाने के बाद भगवान ने पूछा कि सुदामा जी तुम मन में तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा खा नहीं रहा हूं, सर्दी पड़ रही है ना, तो मेरे दांत ऐसे बोल रहे, दांत कर कर बोल रहे। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा कि भाई अब मेरे को भी भूख लगी है, अपन दोनों को चने दिए थे, मेरा हिस्सा है वो मुझे दे। सुदामा जी ने कहा क्या करूं, मुझे भूख लगी, मैं सारा खा गया। कहने सुदामा जी आप मेरे मित्र होकर आपके मन में ये भावना क्यों नहीं आई कि दूसरे का हिस्सा लेना अपराध है? माताजी ने तो दोनों का हिस्सा दिया था, तुमको मेरा हिस्सा मेरे से बिना पूछे लेने का क्या अधिकार था? ये गलती तुमसे मेरे मित्र होकर के गलती कैसे हो गई? आगे कृष्ण जोर से भूख लगी थी, यही तो बात है। चाहे हमारी कितनी भी आवश्यकता हो, लेकिन हक तो नहीं था ना, अपनी आवश्यकताओं को अपने हक के अंतर्गत ही पूरा करो, मेरे हक से तुमने कैसे लिया? और फिर जब मैंने पूछा तुमने कहा कि नहीं मेरे तो सर्दी से दांत कड़कड़ाते हैं। सुदामा जी ने कहा कृष्ण आज तो मेरे से ऐसी भूल हो गई, आइंदे जीवन भर में किसी का हक नहीं मिला। बहुत अच्छी बात, भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों जो है वहां विद्याध्ययन किए। विद्याध्ययन के बाद इधर जब वो अपने घर में रहने लगे, भगवान का विवाह हो गया, सब हो गया, और पत्नी ने जब भेजा कि आप जो है वहां जाओ, तो वहां भगवान देवे तो लेना नहीं मांगना नहीं, ये सब बातें पहले ही हो गई। तो कहा अच्छी बात है हम जाते हैं। अब द्वारिकापुरी के लिए रवाना तो हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी समुद्र जैसी खाई थी, खूब पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ था। भगवान ने देखा ये सुदामा मेरे यहां कैसे आएगा, तो भगवान तो अनेक रूप बनने वाले, वही तो नाविक बन गए और वही नाव बन गए वहां आए। कौन हो, कहां जाना है? या हमको ये पार हो करके हमको द्वारिका जाना है। द्वारिका क्यों जाना है? बस यही जाना है, द्वारिका के यहां जाना है। द्वारिका को कौन जानता है? तुम अब मुझे कौन जानता है, ये वहां जाने पर ही पता चलेगा। अच्छा तुम किसी को जानते हो? मैं जानता था। किसको जानते हो? वहां द्वारिका का जो राजा है, अरे बात करता है ये, तेरे पेट में तो खाने को कुछ भी नहीं, और वहां जाकर के तू कह मैं द्वारिका नाथ को जानता हूं, मेरे नौका में बैठेगा तो शुल्क लगेगा, कुछ न कुछ पैसा लगेगा, बोल तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास जो चीज है वो तुम्हारे देने तुम्हें देने लायक नहीं है। अच्छा ठीक है बैठ बैठ पार कर देता हूं फिर बात करूंगा। पार बैठ गए, पार किया कि लाओ पैसा, लाओ कि पैसा तो है नहीं, तुम्हारे पास क्या है? जो है सो दे, मेरे पास जो है वो तुम ले नहीं सकते, तुम्हारा लेना अच्छा भी नहीं। ना ना ऐसी क्या बात है, मैं मेरी आजीविका चलाता हूं और जो तुम दोगे उसी से आजीविका चलती है। जो भी कोई नाविक देता है कि नहीं 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 देखो आप ऐसा मत करो, इतना हट मत करो, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है सो देना पड़ेगा, कुछ तो है ही। तो सुदामा जी ने कह दिया मेरे पास दरिद्रता है, दारिद्र्य है, लोगे क्या तो दारिद्र्य दे दो। भगवान तो दरिद्रता लेने के लिए आए थे, चलो अपनी दरिद्रता दे दो। कि दरिद्रता ले लोगे तुम्हारी आजीविका कैसे चलेगी? मेरा काम तो लेने का है, मेरा काम लेने का होता है। कि ये दुनिया हंसेगी तुमको, दुनिया को तो मैं जानता हूं हंसेगी रोएगी क्या करेगी, ये दुनिया ऐसी है कि मुझे क्या हंसे, भगवान शंकर को हंसती है, पार्वती जी को हंसती है, गणेश जी को हंसती है, दुनिया को मैं कहां तक प्रसन्न करूंगा, मैं तो मेरी प्रसन्नता देखता हूं। कि शंकर जी को भी हंसती है कि हाँ दुनिया की परवाह मत करना ब्राह्मण, ये सबको हंसती है, कि शंकर जी को हंसती है, पार्वती जी को हंसती है, जगत जननी है ये, वो जगत पिता है, और गणेश जी साक्षात भगवान है, उनको कैसे हंसते हैं? तो देखो तुमको कथा बताऊं, एक दिन बैल था, उस बैल के ऊपर गणेश को बैठा दिया और भगवान शंकर और पार्वती पैदल जा रहे थे। लोगों ने कहा कि देखो अपने बेटे में ऐसा मोह होता है, ये शंकर और पार्वती भी अपने बेटे का मोह नहीं छोड़ सकते, और शास्त्र कहते हैं कि तुम लोग मुंह छोड़ो, हम काहे के मुंह छोड़े, शंकर पार्वती का मुंह देखो, इतना हृष्ट पुष्ट इनके पास में बैल, अपने बेटे को बैठाएंगे खुद नहीं बैठेंगे, मुंह है ना। अरे बच्चा है तो हंसता खेलता कूदता है, ऐसी दिन भर में कितना ही चला चल सकता है, ये थकता है क्या चलने फिरने दौड़ने में? नहीं मुंह है, इसको ऊपर बैठाएंगे खुद दुख पाएंगे। हाय रे मुंह, बड़ो बड़ो को तूने नहीं छोड़ा। पार्वती ने कहा हमारा दुनिया अपनी बदनामी करती है तो क्या करें, क्या क्या आप बैठ जाओ। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है मैं बैठ जाता हूं। भगवान शंकर बैठ गए, उतार दिया बच्चे को। अरे शंकर जी को शर्म नहीं आती है, स्त्री पैदल चलती है, खुद ऊपर बैठे हुए हैं, ये तो अच्छा नहीं किया। स्त्री पैदल चले, स्त्री अबला होती है, पुरुष जितना बल थोड़ी होता है स्त्री में। तो भगवान शंकर कहा अच्छा भाई मेरे को तो दुनिया बोलती है तुम चढ़ जाओ। फिर पार्वती जी को बैठा दिया, बाप बेटे पैदल चलने लगे, देखा ये है स्त्री का मुंह। स्त्री सुख से रहे चाहे खुद दुख पाले, ऐसे करके फिर कहा अपन तीनों ही चढ़ जाओ। तीनों चढ़े तो या देखो बापड़ा बड़क ने मारे हैं तीनों, यानी आई शर्म को नहीं हवे, एक बल्द में तीन तीन चढ़िया हो। तब फिर बाद में भगवान शंकर ने कहा भैया अपने आराम से चलो, ये दुनिया तो यूं ही कहेगी। नाविक की ये बात सुनकर के सुदामा जी सोचे कि नाविक नाव चलाता है और इतनी ऊंची बातें करता है, क्या बात है। तो अच्छा ठीक है भाई, हम हमारे द्वारिका जाते हैं, चले जाए। अब चले 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 तो एक वृक्ष आया, वृक्ष के नीचे सो गए सुदामा जी। सुदामा जी सो गए तो भगवान ने देखा, अब क्या करें, जल्दी से जल्दी इसको बुलावे। तो कोई तो कहते हैं गरुड़ जी को भेजा भगवान ने, गरुड़ जी आप जाओ, और चुपचाप उसको उठा करके ले आना। तो गरुड़ जी गए और अपने पीठ पर चुपचाप सोते हुए को ला करके और सीधा भगवान के महल के पास, बगीचा था, उस बगीचे के अंदर बड़े सुंदर रमणीक स्थान पर उनको सुला दिया। और आराम से नींद ली, जगे ऐसी सुरम्य वायु की सुगंध, शीतल मंद सुगंध और शीतल, ये तीन वायु अच्छी होती है। तेज चले तो भी अच्छी नहीं, मंद मंद और सुवासित अच्छी सुगंध आए उसमें। अब भगवान के यहाँ इतने बड़े 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 वृक्ष फूल फल और फूलों की सुगंध बैठ आए, सुगंध फिर कारे में सुगंध लेने थोड़ी आए। वहां मालीगणों से पूछा कि भाई हमको तो यहाँ द्वारिकाधीश के महल में जाना है। अरे उनके महल का ही तो बगीचा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे सोया था। रास्ते के अंदर सोए होंगे, ये तो कृष्ण का ही बगीचा है, उनके महल का ही बगीचा है। तो भाई अब मैं महल में कैसे जाऊं, वो रास्ता है उससे जाकर के मुड़के ही चले जाऊं। चले आए, खूब आनंद से वहां पर गए। अब जो ही सुदामा जी को देखा तो भगवान अपना सिंहासन छोड़ करके आए। पहले आकर के किसी द्वारपाल ने सूचना दी कि महाराज एक आपके पास में कोई आदमी दर्शन करने हैं। क्या हुआ, क्या उसका शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। सिर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं और पैरों में कोई जूती नहीं, शरीर एकदम मरियल दुरियल, जाने कौन से गांव से आया। धोती फटी से लटी दुपटी और उपाय उपा न कह नहीं सा सा सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देख रहे हो, चकिसो वसुधा अभिराम चकितों के देख रहा है, जैसे उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। मैंने पूछा उससे कि भाई कौन हो। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। सुदामा अब द्वारपाल से बोले नहीं, भगवान दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े गए। रुक्मणी भी उसी पलंग पर बैठी हुई, रुक्मणी से भी बात हुई, सीधे दौड़े दौड़े गए। जाकर के भगवान उससे जोर से चिपट जाते हैं, गले लगते हैं सुदामा जी से गले लगते, सुदामा को छोड़ते ही नहीं है। सुदामा और कृष्ण दोनों एक जैसे हो गए। अब एक एक हो गए तो भगवान को विचार आया कि अरे सुदामा का शरीर थोड़ा दुर्बल है, कहीं मैं प्रेम से इसको यूं दबा रहा हूं तो इसके कहीं तकलीफ न हो जाए। सुदामा के मन में आया कि मेरी हड्डी है, इनका कोमल शरीर है, मेरी हड्डियों से इनको तकलीफ न हो जाए। तो जाकर के दोनों ने ये भाव आए ना, तो एक हो गए थे, वह एक होकर दो हो गए। पर ये भी क्या, एक दूसरे के सुख के लिए। भगवान के हृदय में सदा भक्त का सुख रहता है और भक्त के हृदय में सदा भगवान का सुख रहता है कि भाई मुझे तो बड़ा आनंद मिला इनका आलिंगन मिलने से, परंतु मेरी सूखी हड्डियों से इनको तकलीफ हो जाएगी। फिर बड़े प्रेम से लाकर के वहां उनको विराजमान किया और भगवान ने सारी पत्नियों को बोल दिया कि लाओ भाई घड़ा लेकर के आओ। सब घड़े लेकर के आई 16,108 रानी आई कि इतनी घड़े लेकर के क्या करोगे कृष्ण, कि तुम्हारा अभिषेक करेंगे। इतने अभिषेक से ठंडे पानी से मेरा प्राण निकल जाएगा, तो महाराज आपका तो अभिषेक सब करना चाहेंगे। ऐसा ब्राह्मण कभी यहां आया नहीं जिसके लिए दौड़ करके मैं गया हूं, जिसके लिए मैंने अपनी रानी को भी छोड़ा हो। इस सब रानियों में इसी बात का आश्चर्य है कि हमारे यहां ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया। अच्छी बात। तो कहा कि देखो भाई इतने पानी से तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो सब घड़ों से एक एक चम्मच पानी ले लो, उसका अभिषेक करो। अच्छी बात है। फिर जो है वो अभिषेक किया, नहाए धोए और नहाने धोने के बाद में पीताम्बर दिया कि पीताम्बर पहनो। हो पीताम्बर की याद आ गई। फिर पीताम्बर पहने, संध्या वंदन किए और ऐसे करते करते उनके 7 दिन तक उन्होंने वहां रखा अपने पास। देखो वहां भगवान टीका करने लगे ना, ये बात कहना भूल गए। नहाए धोने के बाद टीका करे तो ब्राह्मण के देखो टीका इतना कर दिया ठीक है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, यूं टीका कर दिया फिर यूं करते हैं, फिर यूं करते हैं। सुदामा जी समझे नहीं कि एक बार यूं कर दिया हो गया, भगवान यूं बार बार कर रहे हैं। बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं, कौन कहे, कौन पूछे उनसे। तो भक्तमालकार कहते हैं कि इसलिए करते हैं कि यहां ये बार बार कर रहे, तुम्हारे भाग्य में अब कहीं पर भी दरिद्रता हो उस सारी दरिद्रता को मैं आज मिटा देता हूं, उस सारी दरिद्रता को मिटाने के लिए किया। सुदामा जी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया। अब रात भर भी दोनों साथ साथ ही सोए, भगवान के खूब दर्शन होते रहे और 7 दिन रहने के बाद जब रवाना हुए कुछ दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, भगवान देखते क्या दे। देखो वहां पर एक बातचीत और हुई, भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया क्या, हो गया। प्रयाग तुमने हमको नहीं बुलाया, हम तुम्हारे मित्र हैं बचपन के, शादी में तुमने हमको नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा देखो मैं तो गरीब आदमी, तुम्हारे यहां मेरी में तुमको बुलाता तो क्या पता तुम ये सोचते कि ये गरीब है मेरे कुछ सहायता के लिए बुलाया बुला रहा होगा, इसलिए याद तो किया लेकिन बुलाया नहीं। लेकिन तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुआ, एक विवाह भी नहीं बुलाया, मेरे को कम से कम बुलाना, एक विवाह में तो बुलाते। मैं तो एक विवाह किया, मैं भूल भी गया, गरीब था मेरे पास कुछ था ही नहीं तुम्हारे स्वागत के लिए। तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुआ, कम से कम एक विवाह में तो मुझे बुला लेते। गाने का सुदामा जी तुम्हारे उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। यही मित्रों का लक्षण होता है जो दिल खोल करके आपस में बात करते हैं। सूर्य क्या होता है, अपना हृदय उसको दे देना और उसका हृदय अपने में ले लेना, यही तो दोस्ती होती है। दिखने में दो होते हैं और होने में एक होते हैं। तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आप सब जानते ही हैं, विदा हो गए, उधर महल बन गए, वहां पर रहने लगे। वहां जाते ही उन्होंने पहचाना नहीं, खूब रोए धोए। सुदामा जी ये क्या कर दिया, मेरे आफत पैदा कर दी, दरिद्रता हमारे लिए बड़ी अच्छी थी, यदि देते भी हो तो आप हमको अपने चरणों की भक्ति देते, या कोई साधु संतों का समागम देते हैं। ऐसे करके उन्होंने किया। फिर एक दिन कहा कि देखो तुम फिर मेरे यहां आओ एक बार। तो सुदामा जी एक बार भगवान के पास गए। भगवान के पास गए तो भगवान ने खूब अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। कहा सुदामा जी ने कहा कि कहीं घूमने चलेंगे, चलो। अब द्वारिका के पास में समुद्र, नौका में बैठ गए दोनों थे। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण, लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, माया ऐसी है, माया वैसी है, ये माया क्या चीज होती है, बड़ी प्रबल है आपकी माया, तो मैं भी आपकी माया सुनना चाहता हूँ, माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो मेरी माया को देखना नहीं चाहिए, मेरी माया को स्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरी माया को तो समझ करके और उससे अपना मन हटा लेना चाहिए। सो तो ठीक है, लेकिन वो माया देखना तो चाहता हूँ, कैसी है माया देखना चाहता हूँ। क्या अच्छी बात, माया दिखा है, यहां दिखाओ मराठा। तो चलो ये समुद्र है ना, इसके अंदर डुबकी लगाओ। तो डुबकी लगाए, डुबकी लगाते ही सुदामा जी अपने आप को ऐसा समझ लगे कि मैं किसी देश में आ गया हूं। ये भगवान की माया है, ध्यान से सुनिए। बड़ा विचित्र देश है और यहाँ के नागरिक बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो किसी सुयोग्य राजा की तलाश में है कि इनको अभी कोई राजा नहीं मिला, उनको सुदामा जी मिले, सुदामा को राजा बना दिया, सुदामा जी राजा हो गए, वहां पर आराम से रहने लगे। बहुत सुंदर कन्या, बड़ी रूपवती कन्या, उसके साथ में सुदामा का विवाह हो गया। खूब परिवार बढ़ गया उनका, बाल बच्चे वगैरह, और अपार संपत्ति धन, खूब आनंद से रहने लगे। इतने में ही उनकी पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो उस वहां ये रिवाज था कि जहां पत्नी मरती हो तो पति को भी साथ में जड़ा दो। तो सुदामा जी ने कहा मैं तो जड़ना नहीं चाहता हूं। नहीं, जड़ना आपके चाहने के ऊपर थोड़ी निर्भर है, आपकी पत्नी मर गई आपको सास में जड़ना पड़ेगा। वो गौत घबराए, अरे भैया मैं नहीं मर। नहीं, वो पकड़ पकड़ करके, चिता थी बहुत जोर से उसमें धक्का देने लगे। इतने में वो तालाब ये सागर में से ऊपर उठे, भगवान ने उनको ऊपर उठा लिया। अरे कृष्ण तुमने बड़ा अच्छा किया, अभी मेरे को लोग जड़ा देते। क्यों? वो सारी बात सुनाई। तब भगवान ने कहा सुदामा जी कैसी ये मेरी माया है, इस माया के अंदर कितने कितने लोग उलझ जाते हैं। तुमको दुख हुआ ना कि जाने महाराज क्या माया फैली, कि ये माया ऐसी समझनी चाहिए। तुम अकेले थे, तुम्हारे अंदर से ही स्त्री, तुम्हारे अंदर से ही बाल बच्चे, तुम्हारे अंदर से ही राज्य, तुम्हारे अंदर से ही राजा होना, तुम्हारे अंदर से ही उसका मरना, तुम्हारे अंदर से उसमें तुमको जलने के लिए फेंकना, ये सब बातें तुम्हारे अंदर से पैदा हुई ना। बस ये जो मेरे को छोड़ करके मनुष्य के हृदय में जितनी कल्पनाएं होती है वो सब माया होती है, उससे सावधान रह करके मेरा भजन करना चाहिए। तब सुदामा जी ने कहा महाराज अब मेरा शेष जीवन आपके भजन में ही लगेगा। बस यही है कि मेरे को बराबर सत्संग मिलता रहे, सत्संग, संतों के संग के बिना ये हमारा आपके प्रति भक्ति भाव नहीं बन सकता। ऐसी सुदामा जी की
श्रीमन्नारायण नारायण।